मेराज के तोहफों पे बात करके आगे ले जाती हैं आपको। जब कोई किसी के जाता है तो एक रस्म बनी हुई है ना, कुछ देते लेते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज के मौके में जो तोहफे दिए थे, उसमें एक तो तमाम अहले तौहीद के गुनाहों की माफी। हदीस में आता है कि जिसके दिल में एक जर्रा बराबर भी ईमान है ना, अल्लाह ताला उसको ईमान दे देगा। तौहीद पे मरेंगे तो बिल आखिर जन्नत है। दूसरा मिला था सूरत बकरा की आखिरी आयतें, लिल्लाहि मा फिस समावात से लेके आखिर तक पूरा कुरान जमीन पे मिला, और आखिरी दो आयतें सूरत बकरा की आसमानों पे ले जाकर दी गई। और मैं सोचती हूँ कितना मजा आया होगा अल्लाह के नबी को, लिल्लाहि मा फिस समावात, वहां जाके उस माहौल का हिस्सा बन गया होगा। कहा रात को सोने से पहले ये दो आयतें पढ़ लो, ये तुम्हें किफायत करेंगी। क्या मतलब कि अगर मर गए उस रात में, यानी ये एक तो तुम्हारे लिए किफायत है, बख्शिश का जरिया होगी। और बास कहते हैं कोई रात की नफिल इबादत छुट भी जाती है, ये दो आयतें पढ़ ली अल्लाह किफायत कर देगा। इन तोहफों को आज कहाँ डाल दिया। तीसरा, हर अमल की 10 नेकियां, ये मेराज का तोहफा है। कैसे? शुरू में 50 नमाजें मिली, ऐसा ऐसा 5 हो गई, तो वो कहा अजर में 10 के बराबर है। चौथा और आखिरी जो सबसे खूबसूरत तोहफा है, जिस पे मैंने सोचा था कि आज तो हम सारी बात ही उस पे कर दें तो कम है, और वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें 5 नमाजों का तोहफा मिला। इससे पहले 12 साल सहाबा इकराम अपनी फितरत की पुकार पे नमाजें पढ़ते थे, 2 नमाजें पढ़ते थे, नफिल थी, लेकिन मेराज के मौके पे अब बाज़ाब्ता तौर पे नमाजें मिली। जब वापस आए, मूसा के पास से गुजरे, मूसा अलैहिस्सलाम 6ठे आसमान पे मिलते हैं, सबसे ऊपर इब्राहिम और उसके बाद मूसा। ये दर्जे हैं नबियों के, उसी एंगल से जो अल्लाह का करीबी आसमान है उस पर सबसे पहला, फिर इस तरह से नबी थे। तो मूसा कहते हैं आपको क्या मिला, जैसे आज हम भी पूछते हैं ना, अच्छा क्या दिया भाई ने, अच्छा क्या दिया माँ ने, हैं? तो कहा मुझे 50 नमाजें मिली हैं। कहा है मोहम्मद वापस चाहिए, आपसे पहले मेरी उम्मत को भी मिली थी लेकिन वो नहीं पढ़ सके, तहफीफ कराएं। अब 2 तरह की रिवायतें हैं, आप वापस गए तो 5 कम हुई यानी 45 रह गई, और दूसरी रिवायत में आता है वापस गए तो 10 कम हो गई यानी 5-5 करके, या 10-10 कम करके आखिर में टोटल 5 रह गई। फिर भी मूसा ने कहा कि ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, तो कहा मुझे अपने रब से जाते हुए शर्म आती है। मैं कहती हूँ क़यामत के दिन जाके हम मूसा अलैहि सलाम का जन्नत में अगर चले गए तो शुक्रिया बोले कि आपने 50 को 5 करा दिया। इमेजिन कीजिए 24 घंटों में अगर 50 नमाजें होती तो हम क्या उजर देते। एक टॉपिक मैंने इसी सारे में तैयार कर लिया, इंशाल्लाह किसी मौके पे आपके सामने रखूंगी, जिंदगी रही, कि पिछली उम्मतों और आज की उम्मत है मुस्लिमा का तकाबुल। बिलीव मी, सर सजदे में चला जाएगा। लाडली उम्मत है ये प्यारी उम्मत है नबी की, वल्लाही हम लाडले प्यारे लेकिन बिगड़ गए, लाडो ने हमें बिगाड़ दिया। कहा कि अब पढ़ेंगे 5 लेकिन अजर इनको 50 का ही मिलेगा, ये है 1 के बदले में 10। और 2 दिन पहले हमने इसी क्लासरूम में अल्हम्दुलिल्लाह वो आयत पढ़ी है सूरत अलनाम की, कि एक नेकी जो लेकर आएगा उसको कम से कम अशरूम सालिहा। मेरा लिहाज अब पौना घंटा सिर्फ उस एक आयत पे हमने बात की थी। आज नेकियों को हम अपने वो क्या कहें, जूती की नोक तो मैं नहीं कहना चाहती, लेकिन हम आज नेकियों को एक टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं। जो बंदा हमें नेकी का मौका दे रहा होता है वो हमें सबसे बुरा लग रहा होता है। क़यामत के दिन पता चलेगा जिस दिन एक नेकी के लिए बंदा रो रहा होगा, यौम यफिर्रुल मरु मिन अखी व उम्मीही व अभी, हमने कर क्या लेना था जिंदगी में अगर अल्लाह हमें ये थोड़ा सा भी काम का मौका ना देता। तो बहरहाल मेराज का सफर वाकई बड़ा खूबसूरत सफर था। आप वापस आए, फिर जो उसका रिएक्शन था, उफ इतना स्ट्रांग रिएक्शन था कि मैं कहती हूँ आज हम तो एक सर पे दुपट्टा ले लें तो हमारी जान चली जाती है, और कोई किसी को जरा सा हलाल आराम से टोक दे तो बुरा बनता है, पूरा मुआशरा आपके पीछे लग गया। कहते पहले तो मुंह से कहते थे ये मजनू और दीवान है, आज देखो करके दिखा दिया इसने, कोई है जो रातों रात जाए आसमानों पर वापस आ जाए। हजरत अबू बकर की अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी नबी सल्लम से, तो अबू जहल रास्ते में मिला, सुनाओ क्या हाल है अबू कहाफा, ठीक हूं। अबू कहाफा एक बात तो बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात को बैतुल्ला से निकला, फिर बैतुल मकदस गया, फिर वहां से 7वें आसमान पे गया, फिर रात को वापस आके घर में सो गया, ये मुमकिन है? तो अबू बकर ने क्या कहा, मुमकिन तो नहीं लगता। कहा देखा तेरा दोस्त कहता है, उसको तो मौका मिल गया कि ये तुम हर किसी के गुण गाते रहते हो। कहते किसने कहे, मोहम्मद ने कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ फिर हो गया होगा। उस मौके पे फिर अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला था। تصدیق تب کریں جب کوئی نہیں کر رہا، سارا زمانہ دشمن. ام ہانی کہتی ہیں جب صبح اٹھ کے اللہ کے نبی باہر جا کر یہ بات بتانے لگے تو میں نے آپ کی چادر کا پلو پکڑ لیا. ہے محمد، خدا کے لیے یہ بات نہ باہر جا کے کرنا، کوئی یہ ماننے والی بات ہے؟ لوگ تو دیوانہ مجنوں کہیں گے. آپ نے کہا میں اپنی ذات کے لیے اللہ کا دین نہیں چھپاؤں گا، اور وہی ہوا. مکہ کے گھر گھر میں چہم گوئیاں، آپ کے خلاف باتیں، دیوانہ مجنو اب اور بہک گیا ہے. اب پہلے زمین کی خبریں تھیں، اب آسمانوں کی ہو گئیں، یہ وہ مجمع جمع ہو گیا. جس کو آپ کہیں کہ لوگ ریئیکشن پہ آ گئے، بھائی بتاؤ کیسے گئے تھے، کہاں گئے تھے، کیسا تھا بیت المقدس؟ اب اللہ کے نبی کو کیا پتا کیسا تھا. رات کو گئے، جاتے ہی نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ آگے چلے گئے، اور ایک نظر میں کوئی دیکھتا ہے؟ اللہ نے اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سامنے آپ کی آنکھوں کے بیت المقدس کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس سے پہلے شام جا چکے تھے، سفر جب تجارت کے کرتے تھے، لیکن بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے. لیکن اللہ نے دکھا دی. آپ جنہوں نے دیکھا ہوا تو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. اچھا کوئی اور نشانی؟ کہا تمہیں پتا تمہارا فلاں قافلہ جو تجارت کے لیے گیا وہ فلاں جگہ پہ ہے، کل تک پہنچ جائے گا، چلو انتظار کر لو میرے خبر کا، کل آئے گا تو ان سے پوچھنا تمہارا کوئی اونٹ گما تھا اور وہ تم نے پانی رکھا ہوا تھا جو صبح اٹھے تھے تو نہیں تھا. کہا اچھا دیکھ لیتے ہیں. چل پڑے، واپس آئے. اگلے دن واقعی این ٹائم پہ قافلہ آ گیا. تب کوئی میسیجز نہیں ہوتے تھے کب کا پہنچا، کب کوئی پہنچے. ان سے جب پوچھا دونوں باتوں کی تصدیق ہو گئی. کہا یہ بھی بات سچ ہے. بات تو لمبی ہوتی جاتی ہے لیکن یہ باتیں واللہ ہی وقت چاہتی ہیں ہم سے، وقت بھی چاہتی ہیں ہم سے، یہ ہم سے بہت کچھ چاہتی ہیں. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر گئی تھی اور ابو سفیان وہاں گئے تھے ہرقل کے دربار میں، تو وہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بات کہہ نہیں پا رہے تھے. یاد ہے آپ کو واقعہ، پیچھے آپ نے سیرت میں سنا ہوا ہے، کیونکہ لوگوں نے ان کو جھوٹا کہنا تھا. لیکن انہوں نے کہا وہ اچھا یہ معراج کا ایک سفر ایسا، اس کو بیان کرتا ہوں. کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ کہتا ہے میں ایک رات میں بیت اللہ سے بیت المقدس کیا، یہ ہوا وہ ہوا. اچھا وہاں ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس کے کان کھڑے ہو گئے. کب، کتنے دن پہلے، کب کی بات ہے یہ، وہ جو بھی حالات ہوں گے، کہنے کا مقصد فلاں دن. تو وہ کھڑا ہو گیا اس دربار میں، کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات پھر سچ ہے. یہ سچا نبی کیوں کہتا ہے؟ اس رات جس رات کا یہ تذکرہ کر رہا ہے میں بیت المقدس کی چوکی داری پہ مقرر تھا، اور میں رات کو حسب معمول دروازے بند کرنا چاہ رہا تھا اور دروازہ نہیں بند ہو رہا تھا. پھر میں نے بلایا کسی کو، وہ جو آئرن سمتھ ہوتے ہیں، لوہار کے دروازہ بند کرو، اس سے بھی نہیں ہوا. آخر وہ مجھے کہہ گیا کہ پادری صاحب اس کو چھوڑ دیجئے، لگتا ہے کہ آج یہاں کسی نبی کی سواری ہے. اور کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کھلے چھوڑ گے، اگلے دن جب آ کے بند کرنا چاہ تو بند ہو گئے. اور کہتے ہیں میں نے اس پتھر کے اندر ایک نیا تازہ سوراخ دیکھا جس میں پہلے نبیوں کے بھی سوراخ تھے، آج بھی موجود ہے بیت المقدس میں وہ پتھر. اللہ دشمنوں سے گواہی اپنے رسول کی دلاتا. جس بات کو لوگوں، ابو سفیان کا خیال تھا کہ یہ نبی کے خلاف بات ہوگی، دیکھو بہکی بھی باتیں کرتا، وہ آپ کی گواہی بن گئی. تو حق پہ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دے گا، یاد رکھیے. اب یہ سب ہوا لیکن منایا نہیں گیا. کرنا ہے آپ نے معراج کو منانا ہے، رجب کے مہینے کو عزت دینی ہے، پانچ نمازوں کی فکر کریں. آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ کس طریقے سے یہ ہوا؟ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو حالات تھے اس کو دیکھیں تو آج لگتا ہے نا کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی. آج اس امت کا حال کیا کہ وہ پانچ نمازیں ٹھکر پہ ہیں، پڑھیں گے جب دل چاہے گا، فارغ ہوں گے جتنی پڑھیں گے، جیسے بھی ہوگا ویسے بھی کریں گے، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھ پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصروف ہی پڑھے. اس وقت یہ سوچئے گا کہ پچاس ہوتی تو کیا کرتے. آج کیا میری، آپ کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے مردوں کی نمازیں ہیں؟ کیا وہ رات کو جو خواب اللہ کے نبی کو معراج کے موقع پہ سنایا گیا کہ میں نے فرشتوں کا جھگڑا سنا اس بات پہ کہ جو چل کے پیدل مسجد جاتا ہے اس کا اجر میں لکھوں گا، وہ کہتا میں لکھوں گا، وہ کہتا میں لکھوں گا. آج ہمارے مرد جاتے ہیں مسجدوں میں. آج کتنی مطمئن بیویاں بیٹھی ہیں آج ہم، اور کتنی مطمئن بہنیں اور بیٹیاں اور شوہر اور بیویاں. کیا جی سو کے پڑھ تو لیتے ہیں نا، سر سے اتار تو لیتے ہیں نا، یہ بھی بڑی شکر کی بات ہے، پڑھتے تو ہیں. دیکھیے آج ہم وہ نہیں رہے جو ہم تھے، تو پھر یہی کچھ تو کریں گے. پھر ہم تھوڑے سے چراغا کریں گے، پھر ہم اس دن ایک رات کو جاگیں گے اور بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی. تو یاد رکھیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. کچھ ریڈنگ مٹیریل بھجواؤں گی اگر آپ لوگوں نے کوئی گروپ جوائن کیا ہوا ہے، کہ جس میں آپ کو اس کی مزید ڈیٹیلز ملیں گی، بلکہ ہم ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں، تو آپ لوگ انشاءاللہ اسے خود پڑھیے سنیے جو بھی آپ کو لگے، لیکن سچے علم کو عام کریں. قرآن اور سنت کے ساتھ ایک ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے، اس کو کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. آخری چیز جو رجب کے ناطے سے بہت مشہور ہے، और वाकई ऐसी मशहूर है कि जिसका नाम रजब से भी ज्यादा पहले लोग लेते हैं, और वो है रजब के कूंडे, और उसको क्या कहते हैं, कूंडों की ईद। मैं एक लेक्चर सुन रही थी, बल्कि आप में से भी कुछ लोगों को रिकमेंड कर सकती हूँ, इंडियन कोई स्कॉलर हैं, ब्रदर फैज नाम है उनका, बेसिकली एडवोकेट हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज फ़र्क है आपकी हमारी लैंग्वेज से, लेकिन समझ तो पूरी आती है। तो उनका बहुत अच्छा इस पे लेक्चर है, तकरीबन 2 घंटे का, जिसमें इन पे क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो मैं उनके क्यों सुनती हूँ ये महीनों के बारे में, क्योंकि जितना इन बिदात का असर इंडिया में है, उतना पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हर महीने की बिदत में मशगूल है। वजह एक तो माहौल का असर, दूसरी बात है कि इल्म से दूरी। मैं उनकी कोई बुराई में नहीं कह रही, बात अच्छी इसलिए की कि उनके स्पीकर वो बातें सुना रहे होते हैं कि जो कुछ होता है, जो मैंने उनकी जुबान से कुछ सुना आपने भी नहीं सुना होगा। और वो क्या है, वो कहते हैं कि इसको लोग कूंडों की ईद कहते हैं, तीसरी ईद इसको मनाते हैं, यानी इसका तरीका क्या है। अब जरा बहुत ही हैरतनाक की बात थी, मेरे लिए भी नहीं थी, लेकिन बुक्स में तो इस पर बेशुमार लिखा हुआ है। कहते हैं कि इसका तरीका क्या होता है कि इसको खुफिया तौर पर मनाते हैं, घर के अंदर किसी एक कमरे में पूरे पर्दे तान देते हैं। और कूंडा किसको कहते हैं, आपने सुना होगा, कूंडे मिट्टी के बर्तन होते हैं जिसमें शायद दही भी जमाते थे लोग। कूंडों में खीर पकाई जाती है, शर्त उसकी क्या है, किसी दूसरे को नहीं दिखानी। लोग चुपके से घर में जाते हैं, खामोशी से बोलना नहीं है, और आप पर्दे तान के उस कमरे में उसको मेहमान को ले जाते हैं। फिर वो बैठता है, वो खाता है, वो खाएगा, फिर उसके बाद जिस बर्तन में उसने खाया है और जो उसने बचाया है, उसको फौरन वही डंप कर देते हैं, यानी किसी की नजर नहीं डले, और बगैर बोले वो वहां से खामोशी से निकल के बाहर आ जाता है। तो दूसरा बंदा आता है, क्यों है जी, कहते हैं कि जी ये कूंडों की जो ईद है, इसका तस्करा दूसरों को नहीं करते, छुपा के करते हैं, खुशी का मौका है। भाई किस तरह की खुशी है, क्यों है, कहते हैं बस चुप चुप, इस पे बोलते नहीं। ये इंडिया में इस तरह से मनाते हैं, पाकिस्तान में और तरह से मनाते हैं, इसीलिए मैंने आपको उनका रेफरेंस भी दिया है। तो वो इतनी लंबी कहानियां सुना रहे थे, हंस भी रहे थे लोग उनकी कहानियों पे, कहते ये खुशी का मौका है ना। कहते हैं आप सोचिए कि इस्लाम में खुशी कैसे मनाई जाती है। मसा आपको एक फोन आए, आना है जरा मेरे घर में। अब वो अंदर आया, आप अंदर आ जाए, उसको पर्दे तान के चुप चुप बोलना नहीं, खाना रखें पियो। फिर वो कहते जो उसका खाना बचा ना, उसको भी सबको डंप करते हैं, और अगले दिन सुबह जब वो कमरे का दरवाजा खोलते तो उधर कोई चीज नहीं होती, जूठा खाना, बर्तन, और उस बंदे से जो गुली कराते हैं वो सब पानी उधर अंदर डम कर देते हैं। क्यों, कि ये खुशी दूसरों को नहीं बतानी। तो वो कहते हैं कि जब कोई आपके पास आए और ये आप सारा करें, मुझे क्या मौसम है, कल बेटा हुआ मेरे घर में, तो भाई बेटे की खुशी में इतना छुपाने की क्या जरूरत है। यानी वो कहते हैं कि लोगों को अगर आप अपनी किसी खुशी के मौके पर इनवाइट करें तो कैसे इस तरह छुपके करेंगे, आप तो फौरन ऐलान लगा देंगे, बेटा हुआ लड्डू खिलाओ, मिठाई खिलाओ। क्यों, क्योंकि खुशियां तो सबके साथ मिलके मनाई जाती हैं। अब इसकी असल क्या है, कहानी सुन लीजिए। और इसको आम लोग पे जो लोग रजब के कुंडे बनाते हैं ना, वो इमाम जाफिर रहमहुल्ला की तरफ मंसूब करते हैं, और इमाम जाफिर रहमहुल्ला को वो उस्ताद साबित करते हैं इमाम बुखारी का, हालांकि दोनों की आपस की मुलाकात भी साबित नहीं। लंबी बात को छोटा कर दूं ना, तो असल में 22 रजब को जो मनाते हैं ना, ये हजरत अमीर मुआविया रहमहुल्ला की वफात का दिन है। कहानी पीछे से जाके जो इसकी खुलती है वो क्या है कि अमीर मुआविया रहमतुल्लाह के दौरे खिलाफत में खारिजाइज कहते हैं इनको इंग्लिश में, ये दीन से निकला हुआ एक ग्रुप था। ये सब डिविएटेड फिक्र के और जो दीन से निकले ग्रुप थे ना, उनमें से 2-3 ग्रुप थे, वो इनसे बहुत तंग थे, क्योंकि ये उनके मकामों पर तनकीद करते थे, और इसी तरह से दीन में उन्होंने बहुत सारी तब्दीलियां की, बिदात शामिल की। तो जिस दिन अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, उन लोगों ने, खारिजाइज ने, चुपके चुपके अपने घरों के अंदर खुशी खुशी ये ईद मनाई, और खुल के क्यों नहीं कर सकते थे। आप इमेजिन कीजिए, आप हॉस्टलों में रहते हैं, आप किसी मौके पे खुश हैं, आप 14 अगस्त की खुशी मनाते हैं, आप तो सारे शहर से मिठाई खरीदेंगे ना, मदीना स्वीट से भी लेंगे, यादगार से भी, सबको पता लग जाएगा। वो कहते हैं चूंकि ये एक खुल के करना नहीं चाहते थे, क्योंकि लोग इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि खलीफा का इंतकाल, अब देखिए ना, किसी मुल्क का सदर मरे तो आप खुशी में मिठाई बांटे तो पुलिस ले जाएगी। तो इन्होंने अपने घरों में छुप के खुशी मनाई थी, वहां से लेके आज तक ये दिन किस खुशी का बन गया। और इस पूरी कहानी को जो लोग पढ़ते हैं जब मनाते हैं, उनको भी नहीं पता कि उन्होंने इसको पूरी कहानी में रखा हुआ है। एक शख्स है, लकड़हारे की कहानी सुनी हुई आपने, मैं तो अपना 1 मिनट भी ना उस पर लगाऊं, लेकिन आप पढ़ें जो लोग मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। इसके ऊपर एक शख्स था जिसने अपनी एक किताब है, किताबुल अजायब कुछ कहानियों की एक किताब है, जिसमें उसने लोगों के अजीबो गरीब वाक्य लिखे हैं। उसमें उन्होंने नाउज बिल्ला इमाम जाफिर की तरफ इस पूरी कहानी को मंसूब किया हुआ। इमाम जाफर ने लोगों से कहा कि अगर तुम मेरे नाम पर ये मीठा पकाकर कुंडों के नाम पे भर दोगे, मेरी अल्लाह से बात हो गई है, कल क्यामत के दिन अगर तुम पकड़े गए तो मैं आके बचा लूंगा। वो लोग जो ये करते कराते हैं, वल्लाह उनको भी नहीं पता कि इनकी असल क्या है। इसके ऊपर मेरे पास पूरा बुकलेट है और अब्दुल्ला बिन बाज रहमहुल्ला की तरफ से प्रिंटेड है, मैं जहां तक उसको फैला सकूं मुझे खुशी होगी। आपको पता है अब्दुल्ला बिन बाज कौन थे? अब देखें ना, हमारे इल्म का तो ये हाल है ना, ये आपको पता है कि आज के दौर के मक्का से कह लीजिए कि जो दारुल उफ्ता कमेटी के बड़े थे, नाबीना थे, और अभी मेरा ख्याल है 8-10 साल पहले उनकी डेथ हुई है। जो भी चीज़ रिसर्च के साथ साबित होती है उन्होंने वो सारी लिखी, उनकी तरफ से एक पूरा बुकलेट छपा हुआ है कि रजब और मेराज का मनाना और ये करना और ये सब कुछ। फिर आप देखिए कि इसमें जो हदीसें बयान की जाती हैं कि रजब मेरा महीना है, शाबान नबी का महीना है, रमज़ान लोगों का महीना है, कोई ऐसी बात नहीं है। यानी चूंकि वक्त पूरा हो गया ना, तो मैं इस सारे को वाइंड अप करूंगी। किस सोच के साथ? आपके पास भी अकल है, वक्त भी है, स्किल्स भी है, उर्दू भी पढ़ सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं, अरबी भी अल्लाह करेगा तो कुछ पढ़ सकते हैं, जाके खुद रिसर्च कर ले। मेरी किसी बात पे यकीन ना करें, मत करें एतबार, आई डोंट माइंड, बट आप खुद पढ़ें। इसके ऊपर आपको लिंक्स चाहिए, आपको बुक्स चाहिए, आप जो लोग मनाते हैं आप उनके पास जाके उनसे कहिए कि रेफरेंस दिखा दें। देखिए मेराज का कुछ ना कुछ ताल्लुक लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ सकते हैं कि वाक्य हुआ था। रजब के कूडे इसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं है आपकी जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ये इस्लामिक कस्टम है तो फिर इसका सिर्फ अरबी का नाम ही ढूंढ दें। देखिए ईद उल फितर अरबी नाम है, ईद उल अदहा, ईद उल फितर क्यों? रोजों के बाद जब फितर, फितर कहते रोजा खोलने को, फितर जैसे इफ्तारी की बात है, खाते हैं। ईद उल अदहा नमाज पढ़ते हैं, कुर्बानियां काटते हैं। आप जाइए आज रजब के कुंडों का अरबी नाम ही ढूंढवा दीजिए, है ही कोई नहीं है। और कूंडा तो पंजाबी का लफ्ज है, आई थिंक सो, ऐसे ही है ना। और आप देखें कि जिन कस्टम्स को, जिन वाक्यों को हम उर्दू पंजाबी में पढ़ रहे हैं, सिर्फ मिसाल दे रही, मसलन दरूद लखी पढ़ते हैं लोग, दरूद माही पढ़ते हैं, पढ़ा के नहीं सुना कभी लफ्ज? ये दरूद लखी का क्या मतलब है? लखी क्या होता है? लख किसको कहते हैं? लाख को कहते हैं पंजाबी में। दरूद लखी का मतलब है लख वारी पढ़न वाला दरूद, पंजाबी में है ना। लाइए इसका अरबी नाम लाइए, अल्फ कहते हैं हजार को ना, कोई अरबी में दरूद अल्फी भी है, दरूद माही, माही किसको कहते हैं पता? मेरा तो ख्याल है वो शौहर को कहते हैं या लवर को कहते हैं, माही मेरा। आप मुझे बताएं जिन दरूदों के नाम पंजाबी में, जिन दरूदों के नाम उर्दू में, जिनकी निस्बतें बुजुर्गों के साथ, वो प्यारे नबी के साथ कैसे जुड़ सकता है? जहन खोलकर दिल से अगर हम इन बातों को देखें, यकीन करें बहुत कुछ होगा। बाकी आप देखिए कि 22 रजब को कूंडे भरने में कोई हलवा पूरी पकाता है, कोई खीर पकाता है, और सबसे पहले ये कब ये रस्म शुरू हुई थी, इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के सुनाती हूँ आपको। इस रस्म की इब्तदा 1906 में अमीर मीनाई के खानदान से हुई, जो हिंदुस्तान के शहर से ताल्लुक रखता था। इस रस्म का मकसद इमाम जाफिर रहमहुल्ला की रूह को इसाले सवाब पहुंचाना था। हालांकि इस बात का तायुन हो ही नहीं सका कि इमाम जाफिर पैदा या फौत रजब में हुए, यानी ना उनकी पैदाइश रजब में है ना उनकी वफात है, लेकिन मनाने वाले उन्हीं के साथ इसको जोड़ते हैं। और इस्लाम में देखिए किसी भी शख्सियत का पैदाइश या वफात मनानी, ना तो सहाबा ने ऐसा किया ना तबा ताबईन ने किया, तो असल बात है कि लोगों को असल दीन नहीं पता। और क्यों नहीं पता? क्योंकि उनके पास इल्म नहीं है। मैं कहती हूँ और कुछ नहीं कर सकते, 12 महीनों का इल्म तुम ले सकते हैं ना, और जाके पूछिए जिस जिसने कि आपको पता इतनी स्ट्रांग हदीसें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कि मैं सबसे पहले हौज़े कौसर पे मौजूद होऊंगा और तुम में से जो लोग मेरे पास आते जाएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा, कुछ लोग आएंगे तो उनको मेरे से हटा दिया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे ए नबी छोड़ दीजिए इनको, इनको ना पिलाएं। मैं पूछूंगा क्यों? ये तो मेरे उम्मती हैं। हत्ता कि उनके चेहरों पे वजू के निशान होंगे, चमक रहे होंगे इनके आजाद वजू की वजह से। तो फरिश्ते बताएंगे कि इन्होंने आपके बाद आपके दीन में तब्दीलियां कर दी थी। तो मैं क्या कहूंगा? फसुखन, हांक दो, दूर कर दो इनको, लिमन गई जरा मिम्बादी, जिन्होंने तब्दीलियां कर दी मेरे बाद। ये बुखारी की रिवायत है। हौजे कौसर के पानी से महरूम कर दिया जाएगा उन लोगों को जो अपनी मर्जी से दीन के नाम पे नई बातें करते हैं। बुखारी की रिवायत है, मनाहद सफ़ीया मरीना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्दुन, जिसने अपनी मर्जी से दीन की बातें मेरी तरफ कर दी और मेरे पास है नहीं, वो मरदूद है, रिजेक्टेड है। नॉर्वे की हुकूमत कौन सा नोट कबूल करती है जो उन्होंने दिया? मेरा ख्याल है सबसे छोटा नोट 50 का, सबसे बड़ा 1000 का। आप 2000 का एक नोट बनाकर ले जाइए। वो सिर्फ नोट नहीं रिजेक्ट करेंगे, आपको पकड़ के जेल में डालेंगे कि आप नकली नोट क्यों बना के फिर रहे हैं। तो जो नकली दीन बनाएंगे वो दुरुस्त नहीं होगा। तो लिहाजा सारी बात का खुलासा ये है कि इल्म से इंशाल्लाह जहन भी खुलता है, दिल दिमाग खुलता है। अच्छा, अब आप ये सारी बातें सुन के जाके शोर मचा दें, ये मैं हमेशा अपने सारे सुनने वालों को कहती हूँ कि जज्ब करें, जज्ब करें, अपने अंदर रखिए। आपको नहीं सच्ची लगी, इधर से छोड़ के चले जाएं, आपको अच्छी सी चाय पिलाते हैं, अभी खत्म, बस एक मुलाकात है, ना कोई गुस्सा, ना गिला, ना कोई बात, नो प्रॉब्लम। अभी और वक्त चाहिए आपको, इट्स ओके, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर दिल मान जाए, अपने अमल से शुरू करें, ना तनकीद करें। अब कल आपको कोई कुंडों के लिए कॉल करे, जी कुंडे रजब क्या, तो आप वहां कहानी सुना दें, ये हो गया वो नूरुल कुरान वाले, वो पहले ही उनकी गुना बख्शे जाते हैं और बख्शवाए मरे गुना, उन्हें कहना है ही ऐसे, ये तो है ही बस आपके कुंडे शुंडे खत्म कर रहे हैं। आप देखिए कि हमें किसी से क्या लेना, ना किसी की जन्नत लेनी है, ना अल्लाह ना करे कि ऐसे सख्त दिल हैं कि किसी को जबरदस्ती जहन्नुम में भेजना है। आपको पता है कि मेराज के वाक्य के बारे में 36 डिफरेंट कॉल हैं, अगर आप चाहें मैं आपको सारे दे सकती हूँ, कि किसी को इसकी डेट के बारे में हतमी ही नहीं पता। तो दीन का मिजाज ये है, हमारी कहीं एनिवर्सरियों की डेटें याद रखते हैं, फिर अपनी पैदाइश की याद रखते हैं, फिर बच्चों की रखते हैं, फिर शोहरों की रखते हैं, फिर उसकी रखते हैं, फिर इसकी रखते हैं, तभी तो फिर हम खुद को ही पूछ रहे हैं ना। आप देखें ना, एक बंदा, और ये सारी याद रखिए, कारोबारी पान है, चीजें बिकती हैं, खीरें पकती हैं, जिसका कुंडों का काम है वो कहेगा कुंडों की रस्म छोड़ दो, वो तो बैंकरप्ट हो जाएगा, उसके तो कुंडे नहीं बिकेंगे जितने उसके बिकने हैं। सेम यही चीज ये 25 दिसंबर और क्रिसमस और ये सब में है कि लोग ये सारा कुछ करके बिजनेस बनाए हुए हैं, लोगों को बिजी रखा हुआ है, और दूसरी बात है कुछ गिल्ट है कि दीन का कुछ नहीं कर रहे, तो चलें फिर कुछ कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो जो कुछ भी कहा है उसमें सही बात को कबूल करे। मैं आप सबके सामने अल्लाह से कहती हूँ कि अगर मैंने जो आपको बताया अगर ठीक नहीं बताया, तो अल्लाह ताला मेरी सलाह कर दे, मैं क्यों दीन के नाम पे भटकूं और मैं ना फंस जाऊं। फिर दूसरी बात यह है कि अगर मैंने कोई सही बात कही है तो अल्लाह ताला उस पर आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। तो ये वो चंद चीजें हैं जो बड़ी बड़ी रजब के नाम पे हैं, लेकिन कुछ और भी हैं। मैं सिर्फ आपके नॉर्थलीज के लिए 2-3 मिनट आपके लेती हूँ। कहते हैं जब माह रजब की पहली जुमेरात होती है तो लोग कुर्बानी करते हैं और अपने बच्चों को नहलाते हैं, और इसको नहलाने के दौरान कहते हैं, या खमीस अव्वल रजबा नजना मिन हसबती वल जरब। ए माहे रजब की पहली जुमेरात हमें हसब, हसरे को कहते हैं बच्चों को बीमारी जो होती है, और जरब यानी खुजली से निजात दिला, इस दिन को करामत रजब का नाम देते हैं। बताइए क्या ये दुरुस्त है कि नहीं? अब आपने कभी सुनी थी ये बात? ये सवाल है, और लोग इस तरह जुमेरात को करते हैं, फिर बाज पूरे महीने को रजब के रोजे रखते हैं, ये ठीक है? नहीं ठीक, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ये अपने ऊपर बोझ डालना है। फिर एक सवाल है, 35 साल की खातून है जो नमाज रोजे की पाबंद है, ये शवाल रजब और शाबान के रोजे रखती हैं, लेकिन इसके मखसूस अयाम इन तीनों महीने के रोजे रखने में रुकावट बन जाते हैं, बस क्या इन तीनों महीनों में रोजे रखने वाजिब हैं या कुछ रख लिए जाएं? तो इसका भी जवाब यह है कि नहीं रखा जा सकता। ये सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं अब्दुल्ला बिन बास साहब ने। तो बहरहाल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इल्मे नाफे अता फरमाए। सिर्फ मैं आपको ये जो चंद स्लाइड्स गूगल से सर्च करके दिखाती हूँ, और आप सब भी कर लीजिए, आप मेरे से भी अच्छी करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ ये टॉपिक के आज का मुसलमान क्या कर रहा है। बस आप देखिए, ये एक स्लाइड है हमारे सामने, मसनून दुआएं और वज़ाइफ, कुव्वत बर्दाश्त बढ़ाने की दुआएं और असबाब। कुरान मजीद पढ़ने से पहले ये दुआ पढ़ो तो इंशाल्लाह सबक जल्दी याद होगा, और जो भी दुआ आप ये इस सोच के साथ ना सुनिएगा कि ऐसे आपने भी पढ़नी है, इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ती, लेकिन आप देखिएगा कि बिस्मिल्लाह व सुभानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलियल अज़ीम अदद कुल्ली हर्फिन कुतिबा व युक्तबु अबदल अबदैन व दहरल दहरैन व सल्लल्ला नबी। अब ये इसका तर्जुमा बहुत आसान है, आपको भी समझ आ रहा है, लेकिन इसके नीचे कोई रेफरेंस है? मैंने नहीं आज तक ये दुआ कभी किसी हदीस की बुक में पढ़ी, मेरा इल्म कम है, लेकिन अगर जिसने भी ये पेपर ये स्लाइड बनाई है उसका फर्ज बनता है कि आपको ये दुआ कहने से पहले देने से पहले इसका कोई रेफरेंस, किसने कहा, मैंने कहा, دیکھیں نا آپ اردو میں کہیے اللہ میرا حفظ درست ہو جائے، اللہ مجھے ترجمہ یاد ہو جائے، اللہ مجھے قرآن یاد ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بٹ جب آپ اس طرح سے دعائیں قوت برداشت بڑھانے کی اور اسباب کہہ کر پھر یہ کہتے ہیں کب پڑھو، تو پھر یہ آپ کے پاس دلیل، تو وہی بات جو مثال دی آپ کو ابھی لیکچر میں کہ نارویجین رول کہہ کر اگر آپ کسی جگہ سٹاپ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو دلیل چاہیے. پھر اسی طرح نیچے لکھا ہے، جو شخص چاہے کہ پڑھا ہوا سبق نہ بھولے یا ایک حرف بھی اس سے فراموش نہ ہو، تو وہ سبق یا کتاب کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ یہ پڑھ لے، انشاءاللہ نہیں بھولے گا. اللہم افتح لنا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. تو پھر تو ترجمہ یاد کرنا ہی آسان ہو گیا نا. دیکھیں میں نے اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، یعنی ابھی شعور نیا نیا تھا، کہ کوئی وظیفہ بتائیں کیا طریقہ ہے کہ قرآن یاد ہو جائے. جیسے شوق ہوتا ہے نا شروع میں بندے کو ترجمہ یاد ہو جائے یا آیتیں یاد ہو، تو انہوں نے کہا قرآن یاد رکھنے کا وظیفہ ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھا جائے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی کام، سیدھی سی بات ہے، جب آپ کوئی کام کہیں دین کے نام پہ، دنیا کے نام پہ آپ کچھ بھی کریں، نو پرابلم. اب یہ دیکھیے اگلی جرت بہت بڑی ہے، میں نام نہیں پڑھتی جن کا بھی لکھا ہوا ہے. وظیفہ کہہ کہ کھانا کھانے کے بعد تین مرتبہ سورت قریش پڑھنے کے فائدے. ایک دفعہ پڑھے گا تو اگر کھانے کے اندر زہر بھی ملا ہوگا تو وہ اثر نہیں کرے گا. کھانا فوڈ پوائزن نہیں بنے گا اور وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا، صحت بنے گا. وہ کھانا اسے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا، نیکی کا ذریعہ بنے گا. اتنی فائدے دوسری دفعہ جو پڑھے، اور جو دوسری دفعہ سورت قریش پڑھے گا اللہ پاک جل شانہ اس کو ایسا دسترخوان صدا دیتا رہے گا، بہترین اچھے سے اچھا عطا فرماتے رہیں گے، ظاہرہ روزی سکھی ہوگی تو دسترخوان اچھا ہوگا. اور جو تیسری مرتبہ سورہ قریش پڑھے گا اللہ اس کی سات نسلوں کو بھی لاجواب کھانے، دسترخوان، رزق دیتے رہیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ریفرنس کدھر ہے، یہ کس نے کہا، کب کہا؟ اس ملک میں تو آپ بغیر مہر لگے کوئی چیز خرید ہی نہیں سکتے، ایسی ہے نا. کتنی بڑی جرات ہے. اب یہ ہو سکتا ہے، ہو، میں نے نہیں پڑھی، میرے علم میں نہیں، لیکن ہو سکتی ہے، تو آپ اس کا ریفرنس دے دیں. اور اگر اس نسخے پہ عمل کریں تو پاکستان کی تو ساری غربت اور بھوک ختم ہو جانی چاہیے نا، صرف یہ وظیفے پڑھنے. اور اتنا حتمی یقینی بات کہنا، یہ چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح یہ دیکھیے، اگلی سلائڈ صرف میں نے اس لیے رکھی تھی کہ نیچے دیکھیے ریفرنس پہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے، جیسے اب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا سلائڈ پہ، لیکن 100 سال کے روزے کا ثواب لکھا ہوا ہے، ایک عمل، 27ویں رجب کی عظمتوں کے کیا کہنے. اسی تاریخ میں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. اور یہ جو ریفرنس ہے نا، یہ حدیث کے نہیں ہوتے، صرف آپ کو یہ بتانے والی ہوں، یہ کتابوں کے ریفرنس ہیں. جن علماء نے یہ باتیں کہی ہیں انہوں نے کسی بک میں لکھی ہیں نا، پھر ہی کسی نے وہاں سے پڑھ کے بتائی، تو یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی بکس نہیں ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیں حدیث کی بک میں بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد اور شمائل اور 6 کتابیں بڑی ہوتی ہیں. کچھ اور بھی ہیں ان کے مجموعے ہیں، بلوغ المرام ہے، ریاض الصالحین ہے، اور اسی طرح لولو المرجان ہے، وہ اسی کے آگے سے. لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ کون سی کتاب حدیث کی اور کون سی کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو بہرحال اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 100 سال کے رات جاگنے کی فضیلت دی ہوئی ہے. اگر آپ صرف 27ویں رجب کو جانے، کون نہیں جاگے گا، ایک رات جاگ کر 100 رات کی جاگے ہوگے تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے. پھر آپ دیکھیں یہ عمرے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ اس رات جو کرتے ہیں، یہ آپ کو میں نے جو ریفرنس بتایا تھا بیچ میں کہ کچھ لوگ عمرہ کرتے ہیں اس مہینے میں، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا، عروہ بن زبیر نے، یہ حدیث میں نے آپ کو بھی سنائی ہے لیکچر میں، کہ ماں تمرا رسول اللہ ہی فی رجب قط. اب آگے دیکھیں صحیح بخاری لکھا ہے نا، ہمارا دل مطمئن. مجھے آپ کو کیا لگے کس نے کہا، کہاں ہوا، حدیث کے کتاب کا نام آ جائے تو پھر اس کے اوپر آپ کو یقین ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہ شب معراج کے نوافل ہے، اتنے لمبے چوڑے ہیں، میں پڑھ کے نہیں سناؤں گی، نہ اس کی ضرورت ہے. اب یہ سب کچھ مارکیٹ میں مل رہا ہے نا، تو جو لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تبھی پھر وہ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور وہ یہ کام کرتے ہیں. اور انہوں نے پوری ڈیٹیل سے 5 وظیفے لکھے ہوئے کہ شب معراج کو رات کو آپ یہ پڑھیے. پھر ایک یہ دیکھیے اگلی سلائڈ جو بہت مشہور ہے، بیج بونے کا مہینہ. لوگ کہتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں یہ، اب دیکھیے سیدنا علامہ صفوری رحمہ اللہ کہتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شبان المعظم پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. بس جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شبان میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اس مہینے میں کچھ نہیں کر سکے تو پھر رمضان میں بھی نہ کریں، یہی مطلب ہے نا. रजब में रजबुल मरजब जिस्म को, शाबानुल मौजम दिल को, और रमजानुल मुबारक रूह को पाक करता है। खूबसूरत लफ्ज है, किसने कहे कहाँ कहे। तो ये चीजों को मैं आपको क्रिटिकली देखना सिखा रही हूँ। आप लोग अपना जरूर शौक पूरा किया करें, देखा करें बाहर। फिर आप ये एक और पेज है, इसमें पूरा पेज लिखा हुआ है कि रजब के महीने के क्या फजाइल हैं। तो मैं आपको तस्वीर का दूसरा रुख इसलिए दिखा रही हूँ कि आप ये ना सोच लें कि सब कुछ आपको ही पता चल गया, दूसरे भी बाहर से बहुत कुछ पढ़ते देखते सुनते हैं। तो बस ये एक क्राइटेरियन रख लीजिए कि जो अल्लाह के नबी ने कह दिया, वमा अताकुम रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, तो इंशाल्लाह उसे फायदा होगा। फिर ये एक आखिरी मरहल स्लाइड है, शबे मेराज नबी मुबारक। हजरत बाबा दीन गंज शक्कर शबे मेराज के लिए फरमाते हैं कि हदीस में आता है कि आपने फरमाया, आज की शब 70,000 मलाइका फरिश्ते नूर के तबाक लिए जमीन पर नाजिल होते हैं और हर घर में जाते हैं। जिस घर में जो शख्स बेदार हो और गुनाहों से दूर हो, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि वह नूर के तबाक इस पर निसार कर दें। तबाक कहते हैं बड़ी सी प्लेट को। ये बयान करते हैं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमहुल्ला की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया कि अफसोस इंसान अपने आप को इस नेमत से महरूम रखे और अल्लाह के काम से में गफलत करे। रेफरेंस कोई नहीं है। आप किसी के नाम पे कोई बात कह दें, वो ठीक है कि नहीं है। तो बहरहाल ये एक और स्लाइड आगे है थी, मैं समझी वो आखिरी है। जन्नती नहर, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई रजब का एक रोजा रखे तो अल्लाह अज़्ज़वजल इसे इस नहर से सैराब करेगा। इसके नीचे भी जो किताब का नाम है वो किसी की लिखी हुई किताब है, लेकिन ये हदीस की किताब नहीं है। और यौम विसाल लिखा हुआ अबुल हसन साहब को ही है, मतलब कुछ बुजुर्ग हैं, तो लिखा हुआ है कि उनके फौत होने का ये दिन है। तो बहरहाल हम अच्छे तरीके से ये चीज़ इसलिए आपके सामने ला रहे हैं कि आप दूसरी भी चीज़ों को देखें, और बस इसका एक इलाज है कि आप इल्म ले लें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे दे। अब एक आखिरी स्लॉट जो हमारे आज के सेशन का होगा, और वो क्या है कि रमज़ान चूँकि अब पूरे 2 महीने बाद है, तो सर पड़ेगी तो फिर ही भुगतनी है, या थोड़ी सी तैयारी कर लें। आपको इंशाल्लाह 10+ कुछ टिप्स देना चाहूंगी कि हम अपने इस आने वाले रमजान को कैसे खूबसूरत और कंफर्टेबल बना लें, कि जो खौफ आ रहा है लोगों को रमजान के नाम पे वो ना आए, और हर साल की तरह हम डरते हैं फिर भी रमजान आ ही जाता है। तो चंद चीजें नोट कीजिएगा, उम्मीद है कि आप लोगों को इससे फायदा होगा।